नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापान के निवेशकों को हरियाणा में निवेश का निमंत्रण दिया। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली नई CBSE नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्ति पाने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे और गुरुग्राम की स्पेशल टास्क फोर्स ने भिवानी में छापेमारी कर एक व्यक्ति से 8 किलोग्राम 940 ग्राम हेरोइन बरामद की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल BSF के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठियों को देश से बाहर किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत और जापान के बीच वर्षों से मजबूत राजनीतिक एवं आर्थिक साझेदारी रही है। अगली पीढ़ी का औद्योगिक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए जापान के साथ मिलकर लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं बन सकती हैं, जिससे बेहतर हरित और समृद्ध भविष्य का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री आज नई दिल्ली में आयोजित इंडो जापान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री नायब सिंह सैनी ने सम्मेलन में पहुंचे जापान के निवेशकों को हरियाणा के साथ भागीदारी करने का निमंत्रण देते हुए कहा कि देश की विभिन्न प्रमुख विकास परियोजनाओं में जापान की उन्नत तकनीक और सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
तो जापान लेकर के आता है वो प्रेसिशन टेक्नोलॉजी और डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। जो भारत लेकर के आता है स्किल, टैलेंट, ग्रोथ एंड एस्पिरेशन, और हरियाणा इन दोनों के संगम पर खड़ा है। एंड साथ हरियाणा भारत में जापानी कंपनियों का सबसे बड़ा केंद्र बना है। लगभग 394 जैपनीज इंडस्ट्री एंड 600 से अधिक जैपनीज व्यावसायिक प्रतिष्ठान आज हरियाणा में कार्यरत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि भारत जापान साझेदारी का सबसे जीवंत और सफल मॉडल किसी राज्य में दिखाई देता है तो वह हरियाणा है, जहां जापानी निवेश, औद्योगिक विकास और तकनीकी सहयोग ने विकास को नई गति दी है। उन्होंने कहा कि यह भागीदारी नवाचार, निर्माण प्रौद्योगिकी, स्थिरता व भविष्य के लिए होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और आधुनिक आधारभूत ढांचा उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि यह जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी एक हालिया परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में से कम 2 भाषाएं भारतीय मूल की होनी चाहिए। बोर्ड ने कहा कि यह कदम अपनी अध्ययन योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा रूपरेखा 2023 के अनुरूप बनाने का हिस्सा है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि तीसरी भाषा के लिए कक्षा 10 की कोई बोर्ड परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्ति पाने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। यह रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। गुरुग्राम की स्पेशल टास्क फोर्स की यूनिट ने भिवानी में छापेमारी कर रोहित नाम के एक व्यक्ति से 8 किलोग्राम 940 ग्राम हेरोइन बरामद की है। बरामद की गई हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 36 करोड़ रुपए आंकी गई है। एसटीएफ अधिकारी प्रीतपाल सांगवान ने एक पत्रकार वार्ता में यह जानकारी देते हुए दावा किया कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार यह राज्य के इतिहास में अब तक की नशीले पदार्थों की दूसरी सबसे बड़ी रिकवरी है। उन्होंने बताया कि खुफिया सूत्रों से पुख्ता जानकारी मिलने के बाद भिवानी में आरोपी के घर छापेमारी कर यह मादक पदार्थ बरामद किया गया।
कल हमारी एसटीएफ गुड़गांव की टीम सब इंस्पेक्टर विवेक के नेतृत्व में भिवानी मौजूद थे। वहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई, एक आदमी यहाँ पे नशे की खेप लेके आया है। ऐसे भिवानी साहब से परमिशन लेके हमारी पार्टी ने वहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट बुलाया और उसकी मौजूदगी में तलाशी ली गई। तो इंदिरा कॉलोनी भिवानी के रोहित के घर से लोहे की अलमारी से 8 किलो 940 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पूछताछ में अभी तक ये पता चला है ये जो का पदार्थ है ये पंजाब की साइड से लेके आता है और हरियाणा में सप्लाई करता है। तो इस पूरी चेन को ब्रश करने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इस नशा तस्करी के धंधे में आरोपी रोहित का सगा भाई भी संलिप्त है। पुलिस जांच के अनुसार रोहित का भाई पहले से ही नशा तस्करी के मामलों में पंजाब पुलिस की वांछित सूची में शामिल है और अदालत द्वारा उसे भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। उसके खिलाफ पंजाब में NDPS एक्ट के तहत गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस को अंदेशा है कि इस रैकेट में कई अन्य स्थानीय डीलर, करियर और बड़े फाइनेंसर भी शामिल हो सकते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर इस अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट को चला रहे हैं। हरियाणा पशुधन व डेयरी विभाग द्वारा पशुधन को भीषण गर्मी और लू से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। हरियाणा पशुधन व डेयरी विभाग के निदेशक डॉ. प्रेम सिंह ने हमारी संवाददाता को बताया कि विभाग के सभी अधिकारियों को पशुपालकों को लू से बचाने के उपायों के प्रति जागरूक करने की हिदायत की गई है।
सभी VLDS पशु चिकित्सक STOs NDD साहिबान को बताया गया है कि वो जितने भी हमारे पशु पालक हैं उनको निर्देशित करते रहें कि पशुओं को कैसे दूसरे गर्मी से बचाना है। पशुओं को छायादार वृक्ष के नीचे बांधे, शेड के नीचे रखें ताकि किसी प्रकार की डायरेक्ट हीट उनके शरीर के ऊपर ना पड़े। दूसरा, उनके अगर पंखे या कूलर की व्यवस्था कर सकते हैं या स्प्रिंकल लगा सकते हैं, पशुओं को रेगुलर पानी देते रहें। पशुओं को एकदम सूखी थोड़ी ना खिलाएं, उसमें कुछ न कुछ लावा मिश्रण जरूर मिक्स करें, हरा चारा मिक्स करके खिलाएं।
स्वास्थ्य विभाग ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर आमजन को लू से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। हमारे जींद संवाददाता को नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. सुमन कोहली ने जींद जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए एहतियाती कदमों की जानकारी दी।
विभाग की तरफ से जैसे ही एडवाइजरी जारी की गई, वार्ड में अलग से बेड हीट मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रोक मैनेजमेंट के लिए चिन्हित कर दिए गए हैं। पूरे जितने भी हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनमें ठंडे पानी की व्यवस्था कर दी गई है। पेशेंट्स के लिए कूलर्स और जो संवेदनशील एरियाज हैं जैसे ICU है, इमरजेंसी है, उन डिपार्टमेंट्स में AC का इंतजाम कर दिया गया है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जापान के निवेशकों को हरियाणा में निवेश का निमंत्रण दिया। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली नई CBSE नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अगले सप्ताह करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नियुक्ति पाने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। और गुरुग्राम की स्पेशल टास्क फोर्स ने भिवानी में छापेमारी कर एक व्यक्ति से 8 किलोग्राम 940 ग्राम हेरोइन बरामद की। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।